नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म कुमारी की इस विशेष पेशकश जो फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव जा रही है और इसका नाम है बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजी श्रीनिधि और पिछले लगभग एक महीने से भी अधिक समय से हम सभी आप दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की यह पहल रही है कि इस बदलाव के दौर में जो थोड़ी बहुत आपको सोशल सपोर्ट की या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस की या इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है वो हम प्रोवाइड कर सके। हम समझ सकते हैं इस दौर में हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के मददगार बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अच्छी कोशिशें की हैं और एक दूसरे के मददगार बने भी हैं और हमने ये भी सीखा है कि मदद मांगना कोई बुरी चीज नहीं है। आखिर दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं और हम भी आपके दोस्ती को चेरिश करते हैं और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से जितना भरसक प्रयास हो सकता है, जितना हम स्पिरिचुअल गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट आपको ऑफर कर सकते हैं उसे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई और बहनें हर दिन आपके साथ मिलते हैं और आपके घरों तक सीधे पहुंचकर आपसे सीधी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बीच आप अपने दिल के सवाल हमसे शेयर करते हैं, आप कोई भी चीज पूछना चाहें तो आप हमारे साथ पूछते हैं जिसके हमारे वरिष्ठ राजयोगी जवाब देते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के दौरान कहीं पर भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या सिर्फ आप हमें एक शॉर्ट आउट देना चाहते हैं तो भी आप हमें कर सकते हैं। फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके चुनिंदा प्रश्नों को हम हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से, जो मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ पूछेंगे। और साथ ही अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बात पॉजिटिव ही है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स पे और उन कमेंट्स को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। हर दिन की तरह हमारे साथ एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट, एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन साथ में जुड़ते हैं जिन्होंने अनेकों दशकों तक राजयोग की साधना की है और लाखों लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर अपने जीवन को सुखद और संयमित बनाने में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी तृप्ति दीदी जी जो सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीदी जी आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। दीदी, जैसे ये बदलाव का वक्त बीता है, बीत भी रहा है, हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से इस चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मगर हम में से कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे पास मदद करने के लिए ज्यादा नहीं है, हमें ही मदद की जरूरत है। ऐसे लोग जब सोचते हैं तो एक तरह से उनको लगता है कि हाँ हम मजबूर हैं और दूसरी तरफ ये भी महसूस करते हैं कि हम असहाय हैं। ऐसे में से जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको भी मदद की जरूरत है, वो व्यक्ति भी जब दूसरे की मदद करना चाहता है तो सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं, मैं सिर्फ लेने वाला नहीं बनूं, मैं भी कुछ देने वाला बनूं। तो ऐसे समय में आप क्या एडवाइस करेंगे कि लोग क्या कर सकते हैं जब उनके पास देने के लिए फिजिकली कुछ ना हो?
बहुत ही अच्छा सवाल आपकी तरफ से आज मिला है। देखो, मदद ऐसी चीज है जो सिर्फ वस्तु से, पैसे से या तो शब्दों से नहीं होती। मदद, सहयोग एक बहुत बृहद शब्द है और उसको लेकर के जब हम चलते हैं तो ये मदद हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। भारत देश की संस्कृति लोगों को ये सिखाती है कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं दूसरों के लिए, वो शब्दों और कर्मों से भी ज्यादा मदद करते हैं। भले मेरे पास आज मान लो लॉकडाउन के कारण बिजनेस नहीं रहा है, नौकरी छूट गई है, पैसे की कमी है, मैं दूसरों को हेल्पफुल नहीं बन सकती हूँ धन से, चीजों से, वस्तु से, लेकिन अगर उन आत्माओं के प्रति मैं रोज कुछ अच्छा सोच करूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्पिरिचुअलिटी तो लोगों को ये भी सिखाती है कि न सिर्फ आत्माएं लेकिन प्रकृति को भी हमारी मदद की बहुत जरूरत है। पशु पक्षी और हमारे आसपास की जो चैतन्य प्रकृति एनवायरनमेंट है उसको भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो जब हम घर में बैठे हैं या तो फ्री हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, कहीं पर भी जाकर हम 5 मिनट 10 मिनट भी उनके प्रति अगर अच्छा सोच प्रवाहित करते हैं तो 101% वहां तक जरूर पहुंचता है। मान लो मुझे पता चला कि किसी देश के अंदर बहुत महामारी ज्यादा फुल फोर्स में फैल रही है। हम जानते हैं कौन कौन से देश हैं, कहाँ की क्या हालत है, वो विश्व विलेज को हम अच्छी तरह भलीभांति जान रहे हैं। मैंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाकर के अगर यहाँ से पॉजिटिव थॉट्स भेजना शुरू किया कि हे आत्माएं, आप खुशहाल रहो, चिंता नहीं करो, यह दिन भी अब बीत जाएंगे, अच्छे दिनों को याद करो, तो जैसे मैं आपको शाब्दिक मदद कर सकती हूँ यहाँ बैठे, वैसे ही मैं मानसिक मदद भी वहां तक पहुंचा सकती हूँ। और ये 101% फैक्ट है कि ये मदद पहुंचती है। आत्माएं उस समय कुछ क्षण के लिए राहत का, शांति का अनुभव करती है। तो ऐसे हम अपने शुभ, शुद्ध और निस्वार्थ संकल्पों के द्वारा भी लोगों को हेल्पफुल बन सकते हैं। अगर मेरे को मदद करनी है तो एक दूसरा और बहुत अच्छा तरीका यह भी है कि हमारी लोगों के साथ दिन भर फोन पर, व्हाट्सएप पर बातचीत होती भी रहती है, हम कुछ अच्छा शेयर करते रहे, लोगों को हम कुछ अच्छाई व्हाट्सएप पर भेजते रहे, हमारा कोई ना कोई अच्छा मैसेज उनके दिमाग के लिए एक टॉनिक बन सकता है, उनके सोच को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बन सकता है। तीसरा तरीका, जब भी हम किसी से बात करें, चाहे घर में करें, चाहे औरों के साथ करें, हमेशा हम पॉजिटिव वे पर बात करें। क्योंकि आजकल इतनी फास्ट नेगेटिविटी फैलती जा रही है, कब ये सब ठीक होगा, कब ये सब कुछ नेचुरल हो जाएगा, फिर से कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, फिर से कब तेजी का पैसे में कब तेजी आएगी, तो ये सभी सोच आजकल लोगों को भटका रही है। हमारी तीसरी और बहुत अच्छी मदद ये हो सकती है कि हम हरेक के साथ उनका भविष्य, फ्यूचर, पॉजिटिव फ्यूचर लेकर के बात करें। पॉजिटिव फ्यूचर में बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, बादल हमेशा थोड़े रहते हैं, जिंदगी में अच्छे ही दिन थे आज दिन तक, तो हम कितना बहलते थे, घूमते थे, नौकरी धंधा करते थे। ऐसे जब हम लोगों के साथ पॉजिटिव बातचीत करते हैं, सकारात्मक शब्दों की, प्रसंगों की लेन देन करते हैं, ये भी कोई कम मदद नहीं है। समय पर आत्माओं को बहुत हिम्मत और सहयोग का सुकून दे देती है। आपका आवाज सुनने में नहीं आ रहा है श्रीनिधि भाई?
ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही दीदी, जो अच्छा, आप अभी कह रहे थे।
अच्छा, हाँ जी,
कि ये याद रखना जरूरी है कि ये भी दिन बीत जाएंगे, और बहुत बार ये होपफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये होपफुल होने के साथ साथ आपने ये भी चीज बताई कि ये नहीं सोचते रहना है कि ये कब ठीक होगा, क्या होगा, कैसे, ये नहीं सोचने के बजाय ये भी दिन ठीक हो जाएगा ये सोचते रहना सही है। हमारे जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, या कोई भी चीज अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप अपने सवाल, अपने कमेंट्स, आप जो भी पूछना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम स्क्रीन पर लेंगे। फेसबुक पे हमारे साथ आशीष कुमार सोनी जी हैं, और आशीष जी का प्रश्न है कि हाउ टू इंक्रीज अवर सेल्फ एस्टीम If we are in self-esteem, is this a part of ego? वो कहते हैं कि हम अपना आत्मविश्वास जो है वो हम कैसे बढ़ाएं? क्या हम अपने self-esteem में रहते हैं तो क्या ये हमारे अहंकार का हिस्सा है, क्या हमारे ये ईगो का हिस्सा है, ये पूछते हैं।
आशीष भाई, आपका सवाल मुझे लगता है लोगों के सामने एक बहुत अच्छा लाइट हाउस है। लाइट हाउस इसलिए कहती हूँ कि आपने जो बात पूछी है उसके अंदर एक बहुत अच्छा सूक्ष्म साइंस समाया हुआ है। ईगो में और आत्मविश्वास में क्या फर्क है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ईगो वो चीज है जो दूसरों को हर्ट करता है। हमारा कोई भी बिहेवियर अगर विथ ईगो ईगो के साथ, अहंकार के साथ है, तो वो दूसरे की दिल को जरूर ठेस पहुंचाने वाला होता है। और अगर आत्मविश्वास के साथ मेरा कोई भी कदम है, तो निश्चित समझ लीजिए कि वो वातावरण में, वाइब्रेशन में, लोगों में एक प्रकार की खुशी और दूसरों को भी हिम्मत दिलाने वाला बनता है। महात्मा गांधी जी जब नैरोबी से, अफ्रीका से भारत में आए, तो उनके अंदर ईगो नहीं था, आत्मविश्वास था। उसके अंदर एक आत्मविश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं अहिंसा के बल से मेरे समग्र भारत देश को इस अंग्रेजों की चुगल से मुक्त करूंगा। अगर उसके अंदर ईगो मिक्स होता तो लोग उसको साथ तो देते लेकिन स्नेह नहीं दे पाते, क्योंकि साथ इसलिए देते कि हर एक को अपने देश के प्रति प्यार है, हर एक को अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार है, तो वो तो निकल पड़ते लेकिन प्यार नहीं मिल पाता। लेकिन उसके अंदर जो आत्मविश्वास था, दृढ़ता थी, तो वो दृढ़ता के कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण उन्होंने लोगों का सहयोग तो प्राप्त किया लेकिन साथ में प्यार भी प्राप्त किया। तो ये डिफरेंट है। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है और वो होनी चाहिए दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे अपने शरीर के कोई भी क्षेत्र में हो। शारीरिक कर्म भोगनाएं भी आजकल देखो कितनी फास्ट बढ़ती जा रही है, उसके अंदर भी फुल कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं, मैं ठीक हूं और ठीक हो ही जाऊंगी, अवश्य होने वाली हूं। तो ये आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो ईगो में तब परिवर्तित होता है कि जब उसके अंदर हम मैं ला करके रख देते, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, वो नहीं। लेकिन जब हम आत्मविश्वास से बोलते हैं तो हमारे शब्द कुछ और होते हैं, उसके अंदर भाव ये होता है कि मेरे से बहुत अच्छा भगवान कराएगा, परमात्मा के साथ मैं ये कार्य बहुत सुंदर रीति से कर सकती हूँ, आप सभी के साथ और सहयोग की दुआएं मेरे साथ हैं। तो शब्दों में कॉन्फिडेंस तो है लेकिन व्यवहार में जो मेरी परमात्मा के प्रति श्रद्धा, लोगों की दुआएं और साथ सहयोग की हमारी जो वाणी, वो आत्मविश्वास बढ़ाती है, लोगों को फील कराती है। ये अहम के शब्द नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के शब्द है।
बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे थे दीदी। ये जो चीज है कि ये कॉन्फिडेंस वाली जो चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। अगर अहंकार होता तो हम किसी को हर्ट करते हैं, पर कॉन्फिडेंस अपने लिए होता है, आप अपने लिए इन चीजों को अप्लाई करते हैं। कुछ दोस्त हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उनके प्रश्नों को मैं ले तो रहा हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि कभी कभार अगर सिमिलर प्रश्न है तो उन प्रश्नों को मैं कोलेक्ट करके दो तीन प्रश्नों को एक साथ भी जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो कृपया माइंड नहीं करें। हमारा एक प्रश्न आया है पूनम अरोरा जी से। पूनम अरोरा हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं। वो कहते हैं, व्हाई चिल्ड्रन गेट एंग्री क्विकली एंड हाउ टू हैंडल देम एंड व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन शुड बी गिवन टू देम। पूनम जी का प्रश्न ये है, वो कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के वाइब्रेशंस उन्हें हमें देना चाहिए और हम बच्चों को कैसे हैंडल कर सकें, जो बच्चों का स्कूल नहीं है, उनके लिए भी लॉकडाउन है, वो भी बाहर नहीं खेलने जा सकते, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है बच्चों के साथ, तो इसके लिए गाइड करें।
हाँ पूनम बहन, आपके इस प्रश्न से मुझे लगता है हजारों को लाभ मिल जाएगा क्योंकि ये प्रश्न हर घर का हो गया है। आपके पास जो ये सवाल है, वो सवाल आज पारिवारिक सवाल बन गया है। क्योंकि इतने सालों से हम इतना लंबा टाइम साथ में एक तो रहे नहीं है, ये पहला समय ऐसा है कि जिसमें परिवार का हर एक सदस्य, पिछले तो कई सालों से सिस्टम बन गई थी सवेरे सब निकले रात को वापस आए खाना खा के सो गए बस, अभी जब हम अधिक से अधिक समय एक दो के समीप रहते हैं नजदीक रहते हैं तो हर एक के संस्कार स्वभाव आदतें उनका नेचर ये कभी मिलता भी है तो कभी टकराता भी है, दोनों ही होता है। लेकिन एक बात हम जरूर इस बात पर ध्यान पर रखें कि बच्चों के अंदर जो आप कहते हैं गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, उसके पीछे मैं आपको चार कारण बताती हूँ। अगर उसका निवारण यथार्थ रीति से कर लिया मुझे नहीं लगता कि वो फ्रेश माइंड, बच्चे को हम हमेशा फ्रेश माइंड कहती हूँ, उनके अंदर कभी यह क्रोध का दाग लग सके। सबसे पहली बात है जो बच्चे क्रोध कर रहे हैं वो सीखे कहाँ से, सीखे कहाँ से हैं, जन्म से तो उनमें वो आदत थी नहीं। जरूर उसने देखा गुस्सा कैसे किया जाता है, उसने देखा चाहे पेरेंट्स में देखा चाहे आपस में देखा कहीं पर भी, तो पहला कारण बच्चों का यह है। दूसरा, बच्चों में आजकल जो क्रोध बढ़ता जा रहा है उसका दूसरा कारण टीवी और मोबाइल कल्चर है, जो वो उसमें उत्तेजित बातें देखते हैं, चलो वो क्रोध की न भी हो लेकिन टेंशन की हो, कोई भी प्रकार के बात नेगेटिव वाइब्रेशन की बातें हो, तो वो जो बच्चा टीवी में चाहे वो घूम रहा है खेल रहा है घर में टीवी चालू है तो उसके अंदर से भी जो प्रकंपन निकल रहे है ना वो पूरे घर के अंदर वातावरण में फैल रहे हैं और वो पूरे वायुमंडल को उत्तेजित कर रहा है, सिर्फ बच्चे को नहीं कर रहा सबको उत्तेजित कर रहा है। दूसरा कारण ये है क्रोध बढ़ने का। तीसरा कारण, अगर हमने बच्चों को बैलेंस से संतुलन से चलाने के बजाय सिर्फ प्यार प्यार और प्यार से ही बड़ा किया है, उसकी हर इच्छा को हर चाहना को, पूनम बेन आप माँ है ना इसलिए अंदर से होता है कि मेरे बेटे को मैं हर चीज ला करके दूँ, हर चीज वो मांगे और मैं हाजिर करूँ, तो बच्चों को भी बैलेंस से अगर चलाने में हमारी कहाँ पर कमी पड़ गई है तो भी जब चीज नहीं मिलती है हम उसकी अपेक्षा को जब पूरी नहीं कर सकते हैं तब भी उसके गुस्से का लेवल थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। और चौथी बात कहूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के पेट में जो भोजन जा रहा है अन्न प्रवाहित हो रहा है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी क्रोध आवेश टेंशन वो क्रोध के साथ साथ चला गया, आप कहेंगे कैसे जाता है, बच्चा तो शांति से एकदम हेल्दी फूड खा रहा है उसके अंदर कैसे क्रोध जा रहा है। तो ध्यान से इस बात को सुनना, जब हम भोजन बनाते हैं खाना पकाते हैं उस समय अगर मेरे विचार किसी भी आत्मा के प्रति क्रोध के चल रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं और अगर गुस्सा हो रहा है तो समझ लीजिए वो रोटी नहीं खा रहा, रोटी के साथ साथ वो क्रोध भी स्वीकार कर रहा है और वो खून जब ब्रेन तक पहुंचता है उसको गुस्से में लाए बिगड़ नहीं रहता। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पेरेंट्स जो थे, दादा दादियां उनके भी बड़े, वो पहले के जमाने में जब खाना पकाते थे तो भजन कीर्तन भगवान का नाम स्मरण करते 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 थे, हम सभी, मुझे मुझे पता है, मैं जब बहुत छोटी थी हमारी लौकिक दादी माँ के साथ रहती थी, तो वो जब सवेरे सवेरे हम स्कूल में जाते थे, हमें लंच बॉक्स वो दे देते थे, लेकिन उनसे पहले वो चक्की पर, घर में चक्की होती थी और उसके ऊपर वो आटा पीसती थी, रोज का फ्रेश आटा ही फ्रेश भोजन में यूज होता था, तो रोज आटा पीसते पीसते वो इतने अच्छे अच्छे, हमारे गुजरात में उसको प्रभातिया बोलते हैं, भजन को जो प्रभात के समय अर्ली मॉर्निंग गाए जाते हैं, तो वो करते थे और इतना इतना प्यार से बनाते थे, तो खाने वालों के अंदर भी वो प्यार, वो भगवान की याद, वो परमात्मा के वाइब्रेशन, वो प्रवाहित होते थे। आजकल तो पूनम बेन, मैं आपको नहीं, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा इसलिए मैं आपका नाम बोल रही हूँ। आजकल तो मेजोरिटी परिवारों की हालत ये हो गई है, घरों के जो अंदर के पूरे की पूरे इंटीरियर डिजाइन बना रहे हैं, वही ये होती है कि एक तरफ किचन हो और बिल्कुल सामने लिविंग रूम का टीवी हो, जो किचन में भोजन बनाते बनाते अच्छी तरह से उस टीवी को देख सके। अब आप सोचिए बच्चों की हालत, घर के पति देव की हालत, हमारी खुद की हालत, वो क्या होगी। पूरा दिन जब हम टीवी देखते, मोबाइल देखते और करते ही भोजन बना रहे हैं, डेफिनेटली वो संकल्प उस अन्न में प्रवाहित होते हैं और बच्चों में, घर के हर सदस्य के अंदर जो हमने देखा और सोचा वो उस भोजन के द्वारा प्रवाहित होकर वहां जाता है। आज देखो, हम सत्यनारायण की कथा आपने कभी जरूर सुनी होगी और उसका प्रसाद भी स्वीकार किया होगा। आपको पता होगा कि वो प्रसाद जब हम स्वीकार करते हैं तो उसकी मिठास कितनी अच्छी होती है, कितनी अच्छी, खाने के साथ ही हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि बनाते समय पूरा टाइम स्मृति में रहता है, मैं ये भगवान के लिए बना रही हूँ, मैं ये प्रसाद बना रही हूँ, तो खाने के साथ ही दिल के अंदर, मन में बहुत अच्छे भाव और भावनाएं पैदा होती है। वही सोजी का हलवा अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ गए हैं और आपके घर वालों ने, कोई ने बाहर से कहा, लिविंग रूम में बैठे बैठे ही बोला कि भाई जल्दी भोजन पकाओ, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ स्वीट बनाओ, आपके घर में सोजी पड़ा है और आपने फटाफट बनाया, वही चीजें सब कुछ डाली है, लेकिन आपके संकल्प भी अंदर डाले, पहले से नहीं बताना चाहिए, ऐसे अचानक आकर खड़े रह जाते हैं, हमें भी कोई दूसरा काम नहीं होता है क्या, कितना मन के अंदर के नेगेटिव भाव और भावनाएं भी उसके अंदर प्रवाहित होती हैं। तो जो सत्यनारायण की कथा में जो हलवा खाया था सोजी का, उसमें और वो अचानक आए हुए जो मेहमान है उस समय बनाए हुए वो हलवे में काफी फर्क आ जाता है। तो बच्चों के ऊपर हमारी सोच भी बहुत असर करती है।
बहुत ही अच्छी बात आप ये कह रहे हैं। मैं समझता हूँ हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये चीज आ रही है तो हम ये नहीं सोचते कि इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से शुरू हो रही है। और आज आपने वो सोर्स भी पॉइंट आउट किया कि बच्चे बचपन से ये चीजें नहीं करते, वो अक्वायर करते हैं चीजें, हमारे आसपास जो चीजें देखते हैं उन चीजों से ये सारी चीजें आती हैं। और भोजन के बारे में आपने बताया, मैं समझता हूँ इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे आप पुराने जमाने के गीतों के बारे में कह रहे थे कि लोग खाना बनाते समय ये सब ध्यान रखते थे कि अच्छे अच्छे गीत गाने हैं, आजकल हम गीत गाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे लोगों को जब कहें भी कि कुछ गीत गाइए तो लोग गाने में हिचकिचाते हैं, अंदर की भावनाएं बाहर नहीं निकाल पाते, ये आजकल का सिचुएशन हो गया है। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे बदलते दौर में हम वापस अपने आप को एनर्जाइज करें, एंटरटेन करने के दूसरे तरीके ढूंढें। सिर्फ टीवी ही देखना नहीं है कि खाना बनाने के समय पर भी हमको टीवी देखना है, ये चीजें नहीं करके कुछ अलग तरीकों से हम अपने आप को खुश मिजाज बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ दीदी, ये सवाल हमारे साथ अमित पूछते हैं। अमित यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पूछते हैं हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग पावर। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास और निर्णय करने की शक्ति को, डिसीजंस लेने की ताकत को हम कैसे अपने अंदर बढ़ाएं, ये पूछते हैं।
अमित भाई, ये सवाल ऐसा है कि न सिर्फ हमारे इनर पावर से जुटा है, लेकिन वो सवाल आपने जो पूछा कि आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति, वो हमारे बाह्य जगत के साथ भी बहुत कनेक्टेड है, बहुत संबंध रखता है। जब हम अपने आत्मविश्वास को जितना बढ़ाते जाते हैं तो स्वतः हमारी निर्णय शक्ति बहुत ही ठोस होती जाती है। कभी कभी हम विम्जिकल हो जाते हैं ना, करे या न करे, होगा या नहीं होगा, ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, हम कोई गलत निर्णय नहीं कर रहे लेकिन निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा होता तो तभी है कि जब इस आत्मविश्वास की कमी होती है। अब आपका प्रश्न ये है अमित भाई कि उसको कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तीन बातें आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहला है, आत्मविश्वास के लिए कुछ ऐसा अच्छा पढ़े कि जो हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट्स, कुछ सकारात्मक सोच को लेकर के आए। आजकल आत्मविश्वास जो कम होता जा रहा है उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है कि पढ़ना माना कुछ भी, आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर, कहां पर भी जो देखते हो, पढ़ते हो, जो भी है, लेकिन जितना हम अच्छाई को देखते हैं वो अच्छाई हमारे अंदर आत्मविश्वास में परिवर्तित होती है। दूसरी बात ये है कि रोज कुछ अच्छी क्रिएटिविटी करने में लग जाएं। छोटा छोटा भी अच्छा काम हम रोज एक एक करते जाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर एक पावर के रूप में जमा होता जाता है। मिसाल के तौर पर अभी बरसात की मौसम चल रही है, एक पौधा संकल्प करे कि चलो एक छोटे से गमले के अंदर भी आज मुझे एक छोटा पौधा लगा देना है, रोज उसका ग्रोथ जब हम, ये तो एक फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, कोई भी एक अच्छा काम, मतलब एक पौधा मैंने लगा दिया, रोज उसके ग्रोथ को देखती जाती हूँ, अंदर से कितनी खुशी, आत्मविश्वास खुशी पैदा करता है। आत्मविश्वास कुछ और अच्छा करने की हमें प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास हमें भविष्य के अंदर सफलता का एक ध्वज, एक मार्ग दिखाता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का ये दूसरा अच्छा तरीका ये है कि रोज कुछ अच्छाई, एक एक छोटी छोटी अच्छाई भी, चलो घर में कुछ हेल्प कर दिया जो हमारी जिम्मेवारी से डिफरेंट है। अमित भाई, आपकी जिम्मेवारी घर के अंदर क्या होगी मैं नहीं जानती हूँ, पढ़ रहे हैं आप, जॉब कर रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी से डिफरेंट है। चलो माँ को घर के अंदर थोड़ा किचन के अंदर मदद कर दिया, थोड़ा घर के अंदर सफाई में साथ दे दिया, ऐसे अपनी फर्ज से कुछ कुछ अलग जब हम घर में काम में मदद कर देते हैं तो हमारी खुशी हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है, क्योंकि उसमें दुआएं ऐड हो जाती हैं, और दुआएं जो ऐड हुई वो हमारे बल को बढ़ाती है। और तीसरी और सबसे अच्छी बात है जिनसे आत्मविश्वास बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत फास्ट बढ़ता है, तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सीख लीजिए, आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छी तरह से घर बैठे भी सीख सकते हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेडिटेशन माना ये नहीं जो शारीरिक योगा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो हमारे हेल्थ को, हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में बहुत अच्छा है, मददगार है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जो 7 डेज कोर्स है मेडिटेशन का, तो उसको अगर आप एक बार सीख लेंगे, कर लेंगे, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत फास्ट गति से ग्रोथ पर ले जाएगा। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है निर्णय शक्ति का, तो वो एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सुपर है, बहुत अच्छा है, तो उसको निर्णय करना बहुत आसान हो जाता है, वो ठोस कह सकता है कि नहीं ऐसे ही होगा, हम जरूर ये करेंगे, मेरे से ये हो सकता है, मैं इधर नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनका अंदर से अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत कहने लगता है, प्रोग्रामिंग उसके अंदर पूरी सेट है। जिसके सेल्फ कॉन्फिडेंस सुपर पावर में है ना, तो उसका अंदर से मन जरा भी हलचल 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 में नहीं है, तो वो स्थिर है, शांत है, एकाग्र है, इस कारण उसकी निर्णय शक्ति उसको बहुत जल्दी साथ देती है। और जो व्यक्ति निर्णय करने में सफल है वो जीवन में भी 101%, शायद कभी कुछ ऊपर नीचे हो, बाकी 101% सफल हो सकते हैं। ओके,
ये जो बात आप कह रहे थे दीदी कि इसमें आप नेचुरली अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आपके अंदर निर्णय करने की भी शक्ति आती है। ऐसे कुछ चीजों को हम बहुत बार सोचते हैं कि ये चीजें अलग अलग हैं, बट एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी चीजें होती हैं। आप किसी एक चीज को तो उस चीज से कुछ और भी चीजें आ सकती हैं। अगला सवाल हम लेना चाहते हैं, हमारे दोस्त जो सवाल पूछना चाहते हैं जो अभी अभी ज्वाइन करें किया है कुछ दोस्तों ने, तो उनके लिए मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई शाउट आउट देना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज ऐसे ही शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेझिझक आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे या यूट्यूब पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स को हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे और कुछ सवालों को हम आज के हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, मास्टर ऑफ मेडिटेशन है तृप्ति दीदी जी से उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रश्न सचिन मिश्रा जी का है और सचिन हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से। वो कहते हैं, ओम शांति, हाउ टू कीप मोटिवेशन एंड मेडिटेशन ऑन, लेजीनेस डजंट अलाउ टू डू दैट, प्लीज गाइड। मैं समझता हूँ सचिन जी का प्रश्न बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन है, और जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे हम जैसे दोस्तों ने कोशिश की कि हम मेडिटेशन सीखें, कुछ अच्छी चीजें करें, बट पहले पहले तो कुछ दिन हमने कर लिया, 2-3 दिन कर लिया, फिर बीच में टूट जाता है, तो मोटिवेशन कहाँ से हम बनाए रखें ताकि हम मेडिटेशन को सतत बना के रखें, और लेजीनेस हमें ये करने नहीं देता है, तो क्या करना चाहिए, गाइड करें, पूछते हैं।
देखो, मेडिटेशन के लिए तो और लेजीनेस को खत्म करने के लिए तो अपनी अपने मनोबल को ही बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको दुनिया की कोई हस्ती नहीं मिटा सकती है, वो आंतरिक दृढ़ता के बल से ही कि नहीं मुझे करना ही है। जितना हम अपने अंतर मन को यह संकल्प बार बार देते रहते हैं, तो अंतर मन एक छोटे बच्चे जैसा है, उसको आप समझाते रहो, मनाते रहो, क्या क्या नुकसान किससे है, क्या फायदा किससे है, तो वो जरूर मानता है और स्वीकार करता है। तो जितना हम इस अंतर मन के साथ अपनी मित्रता पहले जोड़ेंगे, खुद के साथ, जैसे दूसरों के साथ हम टाइम देते हैं, हम अपने आप को हल्का करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हम अपने साथ भी उतने हल्के होकर के बातचीत करना सीखें, अपने आप के साथ भी कुछ समय वार्तालाप के लिए निकालें। अभी तो फिर भी टाइम बहुत अच्छा मिला हुआ है, संध्या के समय, सवेरे सवेरे कभी छत पर चले जाएं, कभी घर में 10-15 मिनट एकांत में बैठे और अपने आप को मोटिवेट करें। हमें दूसरे मोटिवेट करते हैं बहुत सारे, आजकल ये सोशल मीडिया के सोर्सेस हमारे पास हैं, और कितना अच्छा हमें प्रोत्साहन मिल रहा है चारों तरफ से, लेकिन जब तक हमने अपने आप को मोटिवेट करना नहीं सीखा तो बाहर का जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना वो हमारे दिमाग तक रहेगा, दिल में नहीं जाएगा। दिल में तभी जा सकता है कि जब हम अपने आप से कुछ यह निश्चित कर ले कि भी चलो कुछ भी हो जाए कल से तो मुझे ये करना ही है। हमारे यहाँ सेंटर पर बहुत टाइम पहले की मैं आपको बात करती हूँ, सूरत में एक भाई आते थे, लगातार एक महीना तक बार बार बीच बीच में आते रहे, बीच बीच में आते रहे और बार बार एक ही बात करे, पता नहीं बहन जी ये आलस्य छूटता नहीं है, मैं आना तो रोज चाहता हूँ, पता नहीं बहन जी मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं करना तो चाहता हूँ। तो एक बार हमने उसको कहा कि भाई जी आज आप कुछ लिखत में, ये भगवान का पत्र बॉक्स है ब्रह्मा कुमारी संस्था के हर सेवा केंद्र के ऊपर, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, उसका एक अलग बॉक्स रखा जाता है। तो उसने उस बॉक्स के अंदर इतना दृढ़ता से बैठ करके 10-15 मिनट जो अपनी वीकनेस थी वो लिख करके दिया, जो कल से उसको करना था वो लिख करके दिया। लॉकडाउन के ये 3 महीना वो अपने घर बैठे भी डेली मेडिटेशन करता है, डेली। तो दृढ़ता आती है अपने अंतर मन को कोई ना कोई रीति से समझाने से, और समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका संकल्प है, समझाने का दूसरा एक तरीका लिखत भी है। चलो नोट पेन का जमाना चला गया, मोबाइल में लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि भाई कल से मुझे ये करना ही है। और तीसरी बात कहती हूँ, रात को सोने से पहले हमारा अंतर मन 2 टाइम पर हमारी आवाज को बहुत अच्छी तरह से सुनता है। एक, जब हम शांति से रात को अपने बेड पर बैठते हैं दृढ़ संकल्प के साथ, उसके साथ हम वार्तालाप कर दें कि भाई कल से हमें ऐसा करना है, कल से हमें ये जरूरी है। और दूसरा, हमारा अंतर्मन अधिक से अधिक एक्टिवेट होता है जब हम उठते हैं ना, सवेरे उठते हैं, उठने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वो बिल्कुल शांत होता है, और उसको हम जितना प्यार से उस समय कहना चाहे कह सकते हैं। आप अनुभव करके देखना, ये दोनों टाइम अपने मन के अंदर कुछ अच्छे सोच को डाल देना, वो चाहे मेडिटेशन सीखने का हो, चाहे कुछ अच्छाई को एक्टिवेट करने का हो, वो होगा होगा और होगा ही।
बहुत ही अच्छी बात है कि मेडिटेशन के लिए जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं वो हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ भले आज लिखने का जमाना नहीं है, आप सेलफोन पे अपने नोट पैड पे टाइप ही कर लें तो भी एक मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी आपने। मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी एक्सप्लेनेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूनम अरोरा कहते हैं वेल एक्सप्लेन दीदी, थैंक यू। आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा बट कुछ कमेंट्स आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। रंजना चरक कहते हैं राजयोग मेडिटेशन इज अमेजिंग, इट गेव मी पावर टू लुक एट द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स एंड माय सेल्फ, इट इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स, थैंक यू सो मच। रंजना कहते हैं राजयोग उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अनुभूति रहा है, संसार को देखने के लिए एक अलग नजरिया दिया है और एक ताकत दी है जिससे वो ग्रंथों को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। ये बहुत ही नया अनुभव है जो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, ऐसा वो कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं रंजन, थैंक यू सो मच। सुनंदा जी का अगला प्रश्न है जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनंदा जी पूछते हैं कि बच्चों में ना सुनने की आदत कैसे डालें। क्योंकि बहुत बार जैसे आप कह रहे थे दीदी, जैसे आप बातचीत में ये कह रहे थे कि हम बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, और ऐसे टाइम पे जब बच्चे बाहर जाने की जिद कर रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे खाने की जिद कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में बच्चों को ना कह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को कंप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई हम हर चीज इनको देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चों को सारी चीजें मिले, बट मौका ऐसा है, दस्तूर ऐसा आया है जहां पर हमें ना कहना पड़ रहा है, और बच्चे इस चीज को समझे कैसे और उनको कैसे ये आदत डलवाएं कि वो ना सुने कि कोई चीज नहीं अवेलेबल होती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करें।
देखो, ये बात ऐसी है कि आजकल जनरेशन दो तीन बातें स्वीकार करके भी कभी कभी चलना पड़ता है। हम सभी बच्चों को पहले से ही, अगर उसका ग्रोथ शुरू हुआ है और उसको पहले से ही अगर हम ये आदत डालते हैं प्यार से कहने की, आजकल का नजरिया बच्चों के साथ ये हो गया है कि उसको कोई भी चीज अगर हमें नहीं देनी होती है तो हम सबसे पहला शस्त्र उठा लेते हैं डांट का। गुस्से से कहेंगे तेरे को नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं। लेकिन प्यार एक ऐसा अच्छा टॉनिक है कि जो उन बच्चों के अंदर भी वो पॉजिटिविटी के साथ अंदर उतरता है, और उस प्यार के साथ अगर हम उसको सिखा रहे हैं, उसको एक बार, दो बार, तीन बार इन बातों के प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे धीरे 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 करके चेंज होते जाते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है तो उसने जब मांगी उस समय हम उसको फट से ना कह दे, वो नहीं। हमें यहाँ परमात्मा सिखाते हैं कि किसी की भी बात को अगर हमें अस्वीकार करना भी है तो भी एक झटके से कभी भी ना करें, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बूढ़ा है, कोई भी है। क्योंकि हर एक को आजकल अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो गया है, उसको भी जब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है ना तो वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो हमारी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन उनकी बात को भी पहले हम सुने, पहले सुने, जैसे हम बाहर निकले हैं तो बच्चा जरूर कहेगा ही कि भाई ट्रॉफी दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ, आइसक्रीम दिलाओ, यही तो होता है बच्चों को, होता क्या है, हाँ ट्रॉफी दे दो, कुछ रास्ते में घूमते हुए कुछ अच्छा खिलौना लग गया, तो हम सीधा उसको एक एक झटके से खत्म ना करें उसकी बात को। देखो बेटा, आइसक्रीम तो अच्छी चीज है, तुझे भी पसंद है ना, मेरे को भी पसंद है, लेकिन अभी वायुमंडल कोरोना का है, अभी वातावरण देखो कैसा चल रहा है। बेटा, तेरी माँ तुझे बहुत प्यार से तेरे भले के लिए कह रही है। ऐसे जब हम इमोशनली उन्हों को चेंज करेंगे तो बच्चा स्वीकार करेगा, उसके उसके हमारे दिल की बातें उनके दिल को टच करेगी, वो फील करेगा कि नहीं, मेरी माँ मुझे राइट कह रही है। और हमेशा उसकी दूसरी एक बात हम एक जरूर अंदर से ठान ले कि हर बात में बच्चों को ना 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 करते रहे। छोटे होते हैं तभी से बच्चे बेचारे ना सुनने की आदत ही बन जाते कई कई जगह, तो उनसे उन्हों का जो मनोविकास है ना वो दबता जाता है। जितना उसके उसके लिए सुखद है, उसके लिए नुकसान करता नहीं है, तो उसमें हम उसको कहे हाँ भले कर, तो भले कर। बच्चे आजकल तो बेचारे खेलते हैं तो भी फट से हम कह देंगे वहां नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, हम उसको जरूर कहे हाँ बेटा तू जा, लेकिन इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, बेटा तू जरूर उसके साथ खेलना, लेकिन थोड़ा चढ़ने में ध्यान रखना, तो वो हमारी बात को अंडरलाइन भी करेगा और उसका मनोविकास थोड़ा बढ़ता भी रहेगा। और जब हम उसको कभी उसके लिए जरूरी नहीं है ऐसी बात पर ना करेंगे ना, तो वो कभी उस बात को स्वीकार भी कर लेगा कि हाँ मेरे पिताजी मेरी माँ मुझे ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। ना कहा ना, फिर उसको हम आदत जरूर दिलाएं कि बेटा दोबारा जरूर हम आपको ले लेंगे जब आप ठीक हो जाएंगे, अभी आपको खांसी है सर्दी है, जब दोबारा निकलेंगे ना तो एक नहीं तेरे को दो चॉकलेट दिलाएंगे। ऐसी बात है, मुझे मेरी बचपन की बात याद आती है जब हम बहुत छोटे छोटे थे। आपने जो कहा ना ना सुनने की आदत, हमारी जो लौकिक माता थी उन्होंने बचपन से ही हम लोगों को ट्रेनिंग ये दिया था। परिवार इतना समृद्ध नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली के हम थे और मिडिल में भी लोअर मिडिल फैमिली था कि जो हम बाहर के खर्चे ज्यादा नहीं कर सकते थे। तो जब हम छुट्टियों के दिनों में जो निकलते थे घूमने के लिए, तो दुकानों में बहुत अच्छे अच्छे खिलौने देखते थे, लाइन में होती थी दुकानें, कभी कभी वहां निकलते थे। तो हमारे हम बहुत छोटे थे, मुझे याद है आज भी, तो माता जी को हम कहते थे ये लेकर के दो ना, तो वो कहेंगी बेटा ये तेरे काम का नहीं है, ये अच्छा नहीं, उनसे भी अच्छा और आगे मिलेगा। तो हम और आगे जाते थे, ये कैसा है, तो कहती थी बेटा ये नहीं, ये ठीक। वो कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं तेरे को नहीं ला करके देंगे, ये नहीं। वो कहेंगी कि अरे बेटा इसमें क्या है, इनसे भी बहुत अच्छा मिल सकता है। और फिर सारी दुकानें पूरी हो जाती थी, हम घर आ जाते थे, तो घर आकर के तो भूल ही गए होते थे कि खिलौना क्या होता है क्या है, क्योंकि बच्चों की जो जिद होती है ना पूनम भाई, वो क्षणिक होती है, लंबे टाइम की नहीं होती है। हालांकि आजकल के बच्चों का आईक्यू तो हम लोगों से तो ज्यादा और ही ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी जितना हम उनों के सामने वर्तमान परिस्थितियां रखेंगे, उनको समझा करके उनकी बात को सुन करके, फिर अगर उनको हम शांति से कहेंगे तो हो सकता है कि बच्चे धीरे धीरे करते हमारी बातों को एक्सेप्ट करने लगे और हमारे प्रति उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी, जैसे अपना है ना ऐसे हमारे प्रति भी उसका रिस्पेक्ट बना रहे। ये करने जैसी चीज है, ट्राई करके देख लेना, हो सकता है शायद इसमें हाँ बच्चों की जो भी आदतें हैं उसको हम जो न सुनने की आदत आप कह रहे हैं वो शायद बदल भी सकती है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। और जो आप ये कह रहे थे कि ना कहना है, बट ना कहना सीधे से ना नहीं कहना है, बट उसे युक्ति से बताना है, उसे कुछ ऐसे तरीके से समझाना है जिससे बच्चे समझ सकें इस बात को कि माता पिता उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, बट कुछ एक पॉजिटिव तरीके से उस अप्रोच को ले आ रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि जब आप ना कहते भी हैं तो बच्चों के अंदर ना कहने का रीजन आपका ये नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बट आप सिर्फ उनके अंदर पेशेंस सिखाना चाहते हैं, उनको पेशेंस का गुण धारण करवाना चाहते हैं, अच्छी चीजों की परख और पैसों का सही इस्तेमाल, ये सारी चीजें आप सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अपने इंटेंशन को याद रखें। और जैसे दीदी ने कहा कि पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन करें, और सीधे से ना कहने से तो वो रूठ ही जाएंगे आपसे, तो इन बातों का ध्यान पर रख सकते हैं। लगभग हम 50 मिनट के करीब पहुंचे हैं और हमारे पास सिर्फ 10 ही मिनट शेष हैं, तो मैं एक प्रश्न ले सकता हूं और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं इस एक प्रश्न के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ूं। श्रुति गूगल हमारे साथ हैं, श्रुति जी का प्रश्न है फेसबुक से, वो हमारे साथ जुड़े, वो कहते हैं दीदी आई एम एक्सपीरियंसिंग पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम मी व्हेन आई ट्राई टू पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स, इट इज नॉट गुड टू बी असर्टिव व्हेन देयर इज अ नीड rather than suffering inside from their mistakes। वो सवाल पूछते हैं कि मैं देख रही हूँ कि लोग मेरे से दूर चले जाते हैं जब मैं उनके मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करती हूँ, बट मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि जब हम चुपचाप अंदर खुद ही अंदर ही अंदर सफर करें, इससे अच्छा तो हम लोगों के सामने बता दें कि भाई आपने गलती की है, इसकी वजह से हमें अच्छा नहीं लगता है। क्या ये सही नहीं है, वो पूछते हैं और आगे वो बात बढ़ाते हैं, कहते हैं आई सी पीपल डोंट लाइक टू हियर द नेगेटिव थिंग्स बट ओनली प्रेजेस। लोग अपने बारे में बुरी चीजें या नेगेटिव चीजें नहीं सुनना चाहते बट अपनी तारीफें सुनना पसंद करते हैं। मगर अगर हमारा काम ऐसा करने से इफेक्ट होता है तो शायद हमें लगता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बता देना चाहिए। मगर ये कहते हैं कि मुझे इस बात से परेशानी होती है जब लोग मेरे से दूर जाते हैं तो मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। प्लीज गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ और अटमोस्ट केयर रखने का प्रयास करती हूँ, बट क्या ये अप्रोच सही है, क्या मुझे बदलाव लाना चाहिए, वो पूछते हैं।
श्रुति बेन, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको अभी ले चलती हूँ एक डॉक्टर के पास जो सर्जन है। आप इमर्ज कीजिए, आंखों के सामने लाइए कि एक डॉक्टर है, उसको ऑपरेशन करना है, किसी की बुराई को शरीर के अंदर से बाहर निकालना है। अगर वो सीधा ही काटना शुरू कर दे तो पेशेंट उसके पास दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको बहुत टू मच दर्द फील होगा। लेकिन जब कोई दूसरा डॉक्टर पहले उसको एनेस्थेसिया देता है, पहले उसको बहुत इंजेक्शन लगाते हैं ना श्रुति बेन, इंजेक्शन भी तो भी पहले ठंडा ठंडा ना यहाँ पर घिसते हैं और फिर धीरे से इंजेक्शन डालते हैं तो वो अंदर चला जाता है, दर्द कम महसूस कराता है। आप जो लोगों को उनकी नुक्स हैं, कमियां हैं बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर एक ये शुभ भावना है कि उसके अंदर से वो बुराई निकल जाए, वो एक अच्छा इंसान बन जाए। यही यही आपका भाव होता है ना, जब हम किसी को भी उसकी कमी बताते हैं तो बताने के समय हमारे मन के अंदर भाव और भावना तो इतनी ही रहती है कि भाई हर इंसान अच्छा बने, हर इंसान गलतियों से बचा रहे, इसी भावना से कहते हैं। लेकिन तरीका बदलने जैसा है। हमें यहाँ पर परमात्मा सिखाते हैं कि जब भी किसी को किसी की भी गलतियां बतानी है तो पहले उनकी अच्छाइयां उसके सामने पेश करें। परमात्मा के महावाक्य जो हम यहाँ पर सुनते हैं तो हमें भी यहाँ बताया जाता है कि आपके अंदर ये कमी है, हमें भी भगवान बताते हैं। लेकिन पहले अवश्य हमारी अच्छाई को हमारे सामने पेश करते हैं कि आप में ये गुण भी हैं, आप में पवित्रता भी है, आप इतने सात्विक भी हो। अब ये थोड़ा सा व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, इनको स्टॉप कर दो। तो आत्मा अंदर से फील करती है कि हाँ हमें ये चीज हमारे में नहीं होनी चाहिए, हम तो इतने अच्छे इंसान बनने जा रहे हैं। बस यही तरीका हम लोगों के साथ बना करके चले तो लोग दूर होने के बजाय और प्यार से जुटते जाएंगे और नजदीक आते जाएंगे। किसी को भी उसकी नुक्स बताएं तो पहले उनकी दो अच्छाई उनको जरूर फील कराएं। खुशामत ना करें, खुशामत अलग चीज है और उसकी रियलिटी, उसके अंदर रही हुई अच्छाई उसको प्रस्तुत करना वो अलग चीज है। तो उनको हम बहुत प्यार से पहले कहें कि देखो आप कितना घर का काम काज करते हैं, आपके कारण ही तो ये पूरा घर इतना सजा धजा है, सब इतना प्यार से भोजन खा रहे हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए जो आप बार बार गिराते हो ना, तेल गिरा देते हो, दूध गिरा देते हो, कितना नुकसान हो रहा है, तो हम थोड़ा इस बात पर ध्यान रखें। हमें उसको यही बताना था कि आप बार बार तेल ना गिराएं, बार बार दूध को न उभराएं, गैस के पास खड़े रहे। वही बात अगर मैंने उसको सीधा ठोक के कह दी, उसके दिल को ये ठोस जरूर पहुंचेगा कि मैं पूरा दिन इतना खाना पकाती हूँ, इसकी कदर नहीं है, मैं कितना वॉशिंग करती हूँ, कपड़ा धुलाई करती हूँ, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने इतना तेल गिराया वही देखा, तो वो और ही सामना करेंगे। और हमारी अच्छाई जो आपने तो अच्छाई ही सिखाई, इतनी महंगाई में ये तेल नहीं गिराना चाहिए, लेकिन वो अच्छाई को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे हर एक को उसकी वीक पॉइंट बतानी तो जरूर चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर इस भाव और भावना के साथ हम उसको बताते हैं तो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दूसरी बात, जब हम किसी को भी उसकी नुक्स बताएं तो बहुत कल्याण की भावना से, क्योंकि उसमें अगर बताने के समय हमारी भावनाएं नेगेटिव हैं तो भी वो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। कोई की गलती को जब हम बताते हैं उस समय अगर हमें ही आवेश आ जाता है, आप ऐसे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो मैं उसको गलती बता रही हूँ लेकिन गलती के साथ गलती बता रही हूँ, गुस्सा करते करते गलती बता रही हूँ, तो वो आत्मा उसको अच्छा है, उसकी कमी उसको बता रहे वो अच्छा है, लेकिन वो अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जब भी हम किसी की गलतियों को उनको बताएं तो एक उनको विश्वास पहले दिलाएं कि आप हमारे हैं, अपनत्व की भावना, वैर की भावना, विरोध की भावना, मन में उसको नीचा गिराने की भावना, अगर ये बातें हैं तो भी हमारी दिल की बात उन तक नहीं पहुंचेगी। और मैं लास्ट बात कहती हूं, कभी भी किसी की भी गलतियों को सभी के सामने ना बोले। आप समझते हैं बहन जी इस बात को? हाँ, स्वीकार करते हैं। दिल कहता है किसी की भी गलती को जब हम चार के बीच में, आठ के बीच में, सभी के बीच में बोलते हैं ना, तो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो टूटता है, अंदर से वो आत्मा एक तो कमजोर है, उसमें कमी है, मतलब वो वीक है, और जब हम उसको सभी के बीच में बोलते हैं ना तो वो और ज्यादा डाउन हो जाते हैं। हमारी भावना ये होनी चाहिए उसको ऊंचा उठाने की, उसको और बेहतरीन बनाने की। तो अगर ये तीन चार बातें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर किसी की गलती को हम बताते हैं तो वो जरूर उसको महसूस भी करते हैं और उसको परिवर्तन करने की उसमें ताकत भी। उसके साथ दो चार शब्द हम और उसको जोड़ के कह दे कि ज्यादा नहीं है, ये छोटी सी ये बात है, अगर इसको आप सुधार कर लेंगे ना, बहुत, मैं आपको साथ देंगी, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर के इसको निकालेंगे जरूर, तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
बहुत ही अच्छी बात है दीदी। मैं समझता हूँ आज के जो कॉन्वर्जेशन में जो बातें आपने शेयर की है, उन सभी चीजों को हमारे दोस्त अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था अभी, तो बहुत सारे दोस्तों ने थैंक यू कहा है। मैं हमारे सभी दोस्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तृप्ति दीदी, कि आज आप हमारे साथ आए, सूरत से लाइव हमारे साथ जुड़े और हमारे दोस्तों के सवालों के लिए आपने सॉल्यूशंस ऑफर किए, उनको गाइडेंस ऑफर किया। थैंक यू सो मच। और हमारे सभी दोस्तों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने दिल खोल कर ये सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किए। बहुत सारी चीजें इंटीमेट थी जो आपने शेयर की, शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम मुलाकात करेंगे, फिर मिलते रहेंगे, बट आप सभी की तरफ से मैं तृप्ति दीदी का दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच दीदी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
धन्यवाद
दीदी। हर दिन हम हमारे मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन के साथ, उनके साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दो तीन मिनट के लिए आप हमें भी थोड़ा मेडिटेशन कराएं और हमारे दोस्त आप सभी के साथ मिलकर मेडिटेशन करेंगे। दीदी जी
जरूर जरूर हम सब मिलकर मेडिटेशन करें। अभी पहले सभी आप जहां भी बैठे हैं स्थिर होके बैठ जाएं। अगर टेका लिया हुआ है तो दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बैठक का असर भी हमारी एकाग्रता के ऊपर बहुत अच्छा असर करता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो भी ध्यान अनुभूति करने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बैठक को बहुत बहुत महत्व दिया है। तो अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है तो स्थिरता को अपना ले, मन के विचारों को कुछ क्षण के लिए शांत कर दे, अनुभव करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चारों तरफ से विचारों को समेट कर मस्तक में चमकती हुई आत्मा पर एकाग्र कर दे। ध्यान से देखे सभी, मस्तक के मध्य भाग में चमकती हुई मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा, स्वयं ही स्वयं से वार्तालाप करें, मैं अपने स्वभाव और व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख दूंगी। सर्व की विशेषताओं को सर्व मानव आत्माओं के सद्गुणों को देखते हुए सकारात्मक व्यवहार करूंगी। प्रतिदिन कुछ समय संसार में शांति के वाइब्रेशन प्रवाहित करूंगी। अनुभव करें मुझसे शुभ विचार श्रेष्ठ विचार प्रवाहित होकर पूरे घर में चारों ओर फैल रहे हैं। घर के वायुमंडल को शांत और सात्विक बना रहे हैं। मस्तक से शांति की किरणें घर के कोने कोने में प्रवाहित हो रही हैं। चारों ओर शांति ही शांति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम